मुंबई में वो मेरा पहला दिन था। 252 बस पकड़कर मैं चार बंगले से अंधेरी पहुंचा। सड़क के दोनों तरफ पटरियों पर मार्केट लग रहा था और भीड़ काफी थी। सच बोलूं तो जैसा सुना था मुंबई के बारे में कि मुंबई ऐसी दिखती है, मुंबई मुझे बिल्कुल भी वैसी नहीं दिखी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि आखिर इस शहर में ऐसा क्या है कि लोग इसे सिटी ऑफ ड्रीम्स कहते हैं। और यही सोचते सोचते मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। 2 मिनट के अंदर ही लोकल ट्रेन दनदनाते हुए स्टेशन पर आ गई और एक भीड़ का हुजूम टूट पड़ा ट्रेन के अंदर चढ़ने के लिए। मैं पिसता पिसाता किसी तरह से ट्रेन के अंदर घुसा और एक कोने में खड़े होकर मैंने चैन की सांस ली, जिसमें चैन कम लोगों के पसीने की बदबू ज्यादा थी। दादर स्टेशन पर बड़ी मुश्किल से आधी सीट मिली बैठने के लिए। वो तो शुक्र है उस लड़की का जिसने मुझ पर तरस खाकर थोड़ी जगह दे दी। जैसे ही मैं बैठा और ट्रेन ने दादर स्टेशन छोड़ा, खिड़की से हवा का एक झोंका आया और मेरे माथे पर बाल लहरा उठे। ये हवा कुछ अलग थी, इसमें महक भरी थी, एक खुशबू थी। तभी मुझे एहसास हुआ ये खुशबू मेरे बगल में बैठी लड़की से ही आ रही थी। और फिर मैंने धीरे से अपना मुंह घुमाकर लड़की को देखने की कोशिश करी। उसके माथे पर एक लठ हवा से झूम रही थी। उसने एक येलो फ्रेम का रीडिंग ग्लास लगाया हुआ था और गले में एक हेडफोन लटका हुआ था और वो कोई बुक पढ़ रही थी, अपनी ही दुनिया में खोई, इस दुनिया से बेखबर। और मैं उसे एक टक देखे जा रहा था। तभी मेरी नजर सामने बैठी एक मोटी सी औरत पर गई जो मुझे ऐसे घूर रही थी मानो मैं कोई छिछोरा हूं। मैंने तुरंत अपनी नजर झुका ली और बगल में बैठी लड़की का एहसास करने लगा। सच कहूं, मैं भूल चुका था कि मेरा रेडियो स्टेशन में आज पहला दिन है। अरे यार, लाइफ में पहली बार ऐसी लड़की देखी थी जिसे देखने के बाद जैसे मैं सब कुछ भूल रहा था। मैं तो खो गया था। तभी चर्चगेट स्टेशन आ गया और सभी लोग स्टेशन की तरफ निकल पड़े। वो लड़की ठीक मेरे आगे थी और मैं ठीक उसके पीछे। फिर हम प्लेटफॉर्म पर उतरे और अभी भी मैं भीड़ में उसी के साथ चल रहा था। तभी वो साइड में आई और रुक गई, मैं भी उसके पीछे रुक गया। फिर उसने अपनी स्लिपर्स पांव से निकाली और दोबारा पहन के चलने लगी। अचानक मुझे एक झटका लगा और मैं जमीन पर गिर गया। लेकिन ये क्या, लड़की भी झटके से डगमगाई और मेरे ऊपर गिर गई। एक्चुअली उसका दुपट्टा मेरे बैग में फंस गया था। ऐसे हुई थी मेरी नेहा से पहली मुलाकात। लेकिन उसके बाद मैं रोज लोकल में नेहा को ढूंढता लेकिन वो कहीं दिखाई ना देती। फिर मैं धीरे धीरे अपने रेडियो स्टेशन की जॉब में बिजी होने लगा। लेकिन जब कभी मुझे वो सीन याद आता तो मैं बेचैन हो उठता। फिर सोचता शायद मैं कुछ ज्यादा ही सेंटी हो रहा हूं। इधर एक रात कुछ फ्रेंड्स घर पर आए हुए थे और हम सब पार्टी कर रहे थे। दारू चल रही थी, चखना चल रहा था, मतलब फुल एंजॉय कर रहे थे। और हाँ, फ्रेंड्स की डिमांड पर मैं उनके लिए बटर चिकन बना रहा था। तभी मैंने देखा चावल कुछ कम है तो सोचा सोसाइटी के बाहर वाली शॉप से मंगवा लेता हूँ। शॉपकीपर को फोन लगाया लेकिन उसने उठाया नहीं। फिर मुझे याद आया मेरी सिगरेट भी खत्म है, इसलिए मैं ही बाहर चला गया ये सोचते हुए कि सिगरेट भी ले लूंगा और चावल भी ले लूंगा। बहरहाल मैं 5 टकीला डाउन था तब तक। सो व्हाट, मुंबई में क्या फर्क पड़ता है। फिर मैंने बानो जनरल स्टोर से चावल लिए और हरीश भाई की दुकान पर पहुंच गया। हरीश भाई के यहाँ से मैंने क्लासिक माइल का एक पैकेट लिया और उन्हें 500 का एक नोट दिया। हरीश भाई मुझे छुट्टे दे ही रहे थे कि अचानक से ऐसा लगा जैसे मैं मुंबई लोकल में हूँ। सेम टू सेम वही खुशबू जो पहली बार लोकल में आई थी। तभी क्या देखता हूँ, बगल में एक लड़की खड़ी है जो सुतली से लटके लाइटर से सिगरेट जला रही है। जैसे ही मैंने उसका फेस देखने की कोशिश की तो फेस पर उसके लंबे खुले बाल थे जिसने उसके चेहरे को ढक रखा था। पर जैसे ही वो पलटी तो मैं देखा तो देखता ही रह गया। अरे ये तो वही लड़की है लोकल ट्रेन वाली। अरे ये वो जिसने मुझे दीवाना बना रखा है, बेचैन कर रखा है। लेकिन ये क्या, उस दिन तो इसने सलवार कुर्ता पहन रखा था और आज, जमीन आसमान का डिफरेंस। आज उसने एक छोटा सा क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स पहने हुए थे। ऊपर से सिगरेट पी रही थी मैडम। मैं तो कभी ऐसा इमेजिन नहीं कर सकता था। फिर जाते हुए उसने हरीश भाई से कहा अकाउंट में लिख लेना, और ये कहकर चली गई। अब ये तो पक्का हो चुका था कि ये लड़की यहीं कहीं आसपास रहती है। बस अब इतना पता लगाना था कि इसका एड्रेस क्या है, और यही सोचते हुए वापस चला आया कि कल पक्का हरीश भाई से इसके बारे में पूछूंगा। लेकिन फिर मैं अपने काम में इतना बिजी हो गया कि चाह कर भी टाइम नहीं निकाल पा रहा था। अब तक मैं मुंबई में थोड़ा पॉपुलर हो गया था, लोग मेरे रेडियो शो को सुनने लगे थे और मेरे नाम से मुझे पहचानने भी लगे थे। इधर एक और अजीब सी चीज हुई मेरे साथ। एक लड़की रोज मेरे शो पर फोन करती और अपनी पसंद के सॉन्ग्स प्ले करने को कहती। कुछ ही दिनों में वो मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छी लगने लगी थी। एंड यू नो व्हाई? यार कमाल की हंसी थी उसकी। इतनी डिफरेंट हंसी थी कि मैं बता नहीं सकता कि यार शी वॉज वेरी डिफरेंट। 1000 की भीड़ में भी उसको उसकी हंसी को मैं बहुत आराम से पहचान सकता था कि ये वही हंस रही है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। एक तरफ नेहा और एक तरफ ये लड़की जिसका नाम चांदनी था। जब कभी अकेला होता तो नेहा का चेहरा सामने आ जाता तो तभी चांदनी की हंसी कानों में गूंजने लगती। उफ, बहुत मुश्किल में फंस गया था यार। यूं तो चांदनी से रोज बात होती थी, लेकिन चाहकर भी उसका नंबर ऑन एयर कैसे लेता। और हाँ, हरीश भाई से मेरी जब मुलाकात हुई और मैंने उसके बारे में पूछा, उस लड़की के बारे में, तो हरीश भाई ने कुछ ज्यादा नहीं बताया। बोले कि बस यहीं कहीं आसपास रहती है और कोई 2-3 महीने से आती है दुकान पर। सच बताऊं, मैं कभी हेड टेल करता तो कभी पर्चियां निकालता कि इन दोनों में से वो कौन है जो मेरी बनेगी। पता नहीं क्यों, मतलब ऐसा लग रहा था कि इनमें से कोई ना कोई तो वो है जो मेरी जिंदगी है, मेरी जान है। लेकिन चाह कर भी कभी कोई जवाब नहीं मिलता। फिर एक दिन मैं अपना शो करने के बाद मरीन ड्राइव पर बैठा हुआ था कि तभी मैं क्या देखता हूं, एक रेड कलर की कन्वर्टेबल ठीक मेरे सामने रुकती है और उसमें एक लड़की एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ बैठी हुई है। वैसे ही हवा चल रही है, उसके बाल लहरा रहे हैं, और जैसे ही उसके बाल उसके चेहरे से हटते हैं तो मैं देख के शॉक रह जाता हूं। अरे ये तो वही है लड़की जिसको मैंने लोकल में देखा था और फिर हरीश भाई की दुकान में देखा था, नेहा की बात कर रहा हूं। और बस मैं देखता का देखते ही रह गया। लेकिन ये आदमी कौन है जिसके साथ नेहा इतनी कोजी हो रही थी? फिर दोनों ने नारियल पानी लिया और करके गाड़ी चली गई। उस रात में काफी देर तक हरीश भाई की दुकान के आसपास घूमता रहा, ये सोचते हुए कि क्या पता शायद नेहा आ जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगले दिन मेरे शो पर चांदनी का फोन आया, लेकिन आज चांदनी कुछ उदास थी और उसने एक सैड सॉन्ग की फरमाइश करी और ज्यादा बात भी नहीं की और फोन काट दिया। मेरी लाइफ नेहा और चांदनी के बीच छूट रही थी। मैंने डिसाइड कर लिया था इस बार अगर नेहा दिखी तो मैं उससे बात कर रहूंगा या फिर चांदनी से किसी तरह से उसका नंबर लूंगा। लेकिन तभी घर से फोन आया और मुझे कुछ दिनों के लिए घर जाना पड़ा। घर तो आ गया लेकिन बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, बस मुंबई वापस आने की जल्दी थी। जिस दिन मुंबई वापस आया उसी दिन मेरा रेडियो शो था, लेकिन आज चांदनी का फोन नहीं आया। शाम को मैं हरीश भाई की दुकान पर गया जहां मुझे नेहा का नाम पता चला। मैंने डिसाइड कर लिया था नेहा और चांदनी में जिस किसी से मेरी पहली बात हुई मैं उसी को प्रपोज कर दूंगा। यार समझ ही में नहीं आ रहा था कि आफ्टरऑल मैं प्यार किससे करता हूँ, मुझे तो दोनों से प्यार हो गया था। मैं तो बस यही इंतजार कर रहा था कि मेरी किस्मत में कौन लिखी है। इधर अचानक से चांदनी का फोन आना बंद हो गया और ना ही नेहा का कुछ पता चल रहा था। मैं बहुत परेशान सा हो गया था, अचानक से ये हो क्या रहा था मेरी लाइफ में। एक रात में पृथ्वी थिएटर से नाटक देखकर लौट रहा था, घर के पास ही पहुंचने वाला था कि एक ऑटो मेरे बगल में आकर रुका। ऑटो के अंदर एक लड़की नशे में सीट पर लेटी हुई थी और ऑटो वाले ने कहा क्या आप इन्हें जानते हैं, इन्होंने महाड़ा का ऑटो किया था। लेकिन अब जैसे ही मेरी नजर पड़ी तो देखा ये तो नेहा है। मैंने कहा हाँ मैं इन्हें जानता हूँ। लेकिन ऑटो वाला बोला भाई साहब प्लीज इन्हें आप संभालिए ना, बहुत परेशान हो गए हम। एक बार फिर मेरे सामने नेहा थी, होश में नहीं बेहोश। और मैंने उसे धीरे से हिलाते हुए कहा, नेहा नेहा। और उसने नशे में मुझे घूरते हुए देखा और हंसते हुए बोली,
तुम आ गए, कब से ढूंढ रही थी तुम्हें, तुम्हारे चक्कर में कितनी पीली मैंने, देखो।
मैडम फुल टल्ली थे। अल्टीमेटली ऑटो वाला नेहा को मेरे हवाले छोड़कर चला गया और मुझे नेहा को अपने घर लाना पड़ गया। मैंने नेहा को बेड पर लेटा दिया और उसके खाने के लिए पूछा, लेकिन वो बोली,
मुझे खाना नहीं, गाना सुनना है।
मुझे इसकी बात पर हंसी आ गई, कमाल की लड़की है यार। और मैंने अपने रेडियो शो के अंदाज में कहा, तो मोहतर में आप बताएं आप क्या सुनना चाहती हैं। अचानक से वो मुझे घूरने लगी, अब बैठ गई, मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली,
ए मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम आरजे विक्रम हो ना। अरे ऐसे क्या देख रहे हो मुझे, अरे पागल पहचाना नहीं क्या, मैं चांदनी।
और फिर वो हंसते हुए नशे में अपने अंदाज में बोली,
हेलो आरजे विक्रम, चांद की चांदनी बोल रहे हो।
ये सुनते ही मेरे पांव तले की जमीन खिसक गई। यस, ये तो चांदनी की आवाज है,
लेकिन हाउ इज दिस पॉसिबल,
मेरे सामने तो नेहा है, और अगर ये नेहा है तो फिर ये चांदनी। अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन इसके पहले मैं कुछ पूछता वो खर्राटे लेकर सो गई थी। मैंने भी सोचा चलो सोने दो इसे, जब सुबह उठेगी तो फिर आराम से बात करूंगा। और फिर मैं हॉल में आकर सो गया। सुबह करीब 5:30 बजे मेरी आंख खुली और मैं धीरे से बेडरूम की तरफ गया चेक करने को कि नेहा आई मीन चांदनी ठीक तो है। लेकिन वो बेड पर नहीं थी, बाथरूम में भी नहीं थी, पता नहीं कब वो रात में ही निकल गई। अजीब पागल लड़की है यार, क्या करूं इसका कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन एक अच्छी बात हुई, लाइफ से ये कंफ्यूजन था ना नेहा चांदनी, ये दूर हो चुका था। शाम को ऑफिस से आते हुए मैं हरीश भाई की दुकान पर सिगरेट लेने गया तो मुझे वहां जो पता चला वो सुनकर मैं सन्न रह गया। नेहा का अर्ली मॉर्निंग वहीं मेरे घर के पास एक्सीडेंट हो गया था और पुलिस उसे कूपर हॉस्पिटल ले गई थी। ये सुनते ही मैं तुरंत कूपर हॉस्पिटल पहुंचा और डॉक्टर्स ने बताया कि नेहा कोमा में है और उसका बचना बहुत मुश्किल है। अब तो कोई मिराकल ही उसे बचा सकता है, लेकिन मैं किसी भी हालत में नेहा को नहीं खोना चाहता था। वो मेरी जिंदगी बन चुकी थी। और मैं सीधा सिद्धि विनायक पहुंच गया और मैंने गणपति से हाथ छोड़कर प्रार्थना की कि हे गणपति, तुम मुझसे कुछ भी ले लो, लेकिन मेरी नेहा, मेरी चांदनी को बचा लो। तभी पुजारी जी ने मेरे हाथ पर एक फूल रख दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे गणपति ने मेरी सुन ली। सीधा वहां से कूपर हॉस्पिटल आया तो पता है क्या पता चलता है, नेहा को होश आया था। डॉक्टर्स ने कहा अगर 24 घंटे में उसकी हालत नहीं बिगड़ी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं बहुत खुश था, गणपति ने मेरी सुन ली थी। और ऐसे ही हुआ भी, नेहा पूरी तरह से ठीक हो गई, लेकिन उसकी याददाश्त हमेशा के लिए चली गई। उसके घर वाले आए और मेरे सामने उसे टैक्सी में बैठा कर ले गए। मैं खामोश सा उसे जाते हुए देख रहा था, लेकिन कुछ ना कर सका। मेरी मोहब्बत तो जिंदा रह गई, लेकिन मेरी जान हमेशा के लिए चली गई।